सो जबकि हिंदुओं का परमेश्वर इल्म रूह से आप ही बेबहरा है, तो फिर वो दूसरों को रूह का इल्म क्या सिखाएगा। ऊ खेशतन गुमस्त करारह बरी कुनत। बस इससे साफ साबित हो गया कि वो इल्ज़ामी अदम इल्म रूह जो महज इनाद की राह से मास्टर साहेब इस्लाम पर और कुरान शरीफ पर और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाते हैं, वो दर हकीकत हिंदुओं के परमेश्वर और उसके वेद पर आयद हाल होता है। बल्कि ख़ुद वेद ने ज़िमनी तौर पर इस इल्ज़ाम को अपने मुसन्निफ़ के ज़िम्मे मान लिया है, क्योंकि वेद में साफ इस बात का इकरार पाया जाता है कि उसका फ़र्ज़ी परमेश्वर रूहों के पैदा करने से बकुल्ली आजिज़ और मजबूर है। बस जबकि ख़ुद वेद के इकरार से रूह गैर मखलूक हुई और परमेश्वर की उनमें किसी नौ से मुदाखलत ना हुई और रूहों के पैदा करने से परमेश्वर कतन आजिज़ हुआ, तो इसी से दानिशमंद समझ सकता है कि जिसको रूहों के पैदा करने का इल्म याद नहीं, उसको रूहों की निस्बत और दूसरा इल्म क्या याद होगा। एक चीज़ का पैदा कर लेना और उस चीज़ की हकीकत कामिल तौर पर जान लेना दर हकीकत लाजिम मलजूम पड़ा हुआ है। बल्कि अगर ज़्यादातर गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि इंतहाई दर्जे का कामिल इल्म और पैदा कर लेना दर हकीकत एक ही बात है। इस सदाकत से शायद वो अबला मिजाज इनकार करे जो एक नाकिस इल्म को कामिल समझ बैठे, लेकिन एक दाना जिसका ख्याल इस बारीक दकीके तक पहुंच जाए कि कामिल इल्म किसे कहते हैं और किस हालत में किसी इल्म की निस्बत कहा जाता है कि वो कामिल है, वो ज़रूर इन शराहे कल्ब से यकीन कर लेगा कि ज़रूर इल्म ताम और अमल में तलाजुम बल्कि इत्तेहाद वाक़या है। गरज ये बात हिंदुओं के परमेश्वर के लिए बिल्कुल गैर मुमकिन है कि वो ये दावा करे कि मुझे कामिल तौर पर इल्म रूह हासिल है और या कामिल तौर पर रूह के खवास की मुझे खबर है, बल्कि ये दावा तो सरासर कुरान शरीफ के उतारने वाले को जो रब्बुल आलमीन है पहुँचता है और उसी को ज़ेबा है, क्योंकि वो खालिक़ अरवाह है और उसको अपने पैदा करदा की अंदरूनी हकीकत बखूबी मालूम है। जिसने पैदा किया वही जाने, दूसरा क्यों कर उसको पहचाने। गैर को गैर की खबर क्या हो, नज़र दूर कारगर क्या हो। चूँकि दर हकीकत वो रूहों का खालिक है, इसलिए उसने अपने इल्म ज़ाती और ताल्लुक़ खालिकियत की वजह से रूहों की हकीकत और उनके खवास इस कदर बयान किए हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं कि इस बारे में उसका मुकाबला कर सके। और वेद तो ख़ुद कुछ हकीकत नहीं रखता। नाज़रीन इंसाफ़न शहादत दे सकते हैं कि आया रूहों के इल्म से बेखबर होना किसके मुनासिब हाल है। क्या फिल हकीकत जैसा कि मैं ख़्याल करता हूँ ऐसे परमेश्वर के मुनासिब हाल है जिसने आप इकरार कर दिया है कि मैं रूहों के बनाने से आजिज़ और उनके तरीक पैदा करने से महज बेखबर हूँ, या उस कादर मुतलक रब्बुल आलमीन के मुनासिब हाल हो सकता है जो ज़र्रा ज़र्रा के पैदा करने का दावा करता है और हर एक रूह का वजूद और हर एक जान की हस्ती अपनी कुदरत कामिला का नक्श करार देता है। मैं यकीन रखता हूँ कि सब दानिशमंद यही शहादत देंगे कि जिसको पैदा करने की ताकत नहीं, उसको गैर मखलूक चीज़ों की अंदरूनी हकीकत का भी कुछ इल्म नहीं, बल्कि ये इल्म कामिल और ताम तौर पर उसी कामिलुल कुदरत को हासिल है जिसको रूहों के पैदा करने की ताकत और कुदरत है। बस इस बयान से तो हिंदुओं के परमेश्वर और उनके वेद की सारी हकीकत खुल गई। और जो कुछ वेद के मुसन्निफ़ की निस्बत आरिया लोग इल्म रूह का दावा करते हैं वो भांडा बयक बारगी फूट गया। अब भी अगर मास्टर साहेब को वेद के ज़्यादातर पर्दा जाहिर कराने का शौक़ है और नहीं चाहते कि उसके उयूब आम लोगों से छुपे रहें, तो जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, यही तरीक उम्दा है कि इस नहायत दकीक और लतीफ़ बहस के बारे में अलग अलग रिसाले लिखे जाएँ। यानी मैं अलग एक रिसाला मुस्तकिला इल्म रूह के बारे में लिखूँ और मास्टर साहेब अलग लिखें, और हम दोनों फरीक जैसा कि बयान हो चुका है अपनी अपनी इल्हामी किताबों की हर एक दलील और दावे के बयान करने में पाबंद रहें। और मैं कसमियाँ बयान करता हूँ कि मैं मास्टर साहेब की तहरीक पर रिसालतुल रूह लिखने को तैयार और मुस्तैद हूँ, मगर इन्हीं शरायत से जो इस रिसाले में इंदराज पा चुकी हैं। मास्टर साहेब बुरा न माने, मैं सच सच कहता हूँ बिल्कुल सच, जिसमें ज़रा मुबालगे की या आमेजिश नहीं कि कुरान शरीफ़ ने जिस कदर खूबी और उमदगी और सफाई और सच्चाई से रूहों के खवास और उनकी कुवतें और ताकतें और इस्तेदादें और उनके दीगर कवायफ़ अजीबा बयान किए हैं और फिर इन सब बयानात का सबूत दिया है, वो ऐसा आली और बारीक और पुरहिकमत बयान है और ऐसे कामिल दर्जे की वो सदाकतें हैं कि अगर वेद के चारों ऋषि दोबारा जन्म लेकर भी दुनिया में आवें और जहाँ तक मुमकिन हो खौज और फ़िक्र से ज़ोर लगावें, तब भी ये मकाम वसत इल्मी और ये मारिफ़ आलिया उन्हें मुयस्सर नहीं आ सकते, अगरचे फ़िक्र करते करते मर ही जावें। गुस्सा मनाने की क्या बात है और नाराज़ होने का कौन सा महल, हाथ कंगन को आरसी क्या है। आओ वेद और कुरान का मुकाबला करके देख लें, इन दोनों किताबों की ताकत इल्मी आजमा लें। देखो हम महज सच्चाई की राह से दोनों फरीक में से उस फरीक पर लानत करते हैं कि जो अब हक पोशी की राह से इस बहस से गुरेज कर जाए और इधर उधर के बहानों से या बेजा उजरों से बात को टाल दे। मगर याद रहे कि इस बहस में किसी दलील या दावा में वेद की शुरती से बाहर ना जाना होगा, जैसा कि हम भी आयात कुरान शरीफ से बाहर ना जाएंगे। और ये भी आप पर लाजिम होगा कि हर यक शुरती ठीक ठीक संस्कृत की ज़ुबान में मगर फ़ारसी ख़त में माँ उसके लफ्ज़ी तर्जमा व पता व निशान के तहरीर करें, और इन्हीं बातों का इल्तिज़ाम आयात कुरानी के बयान करने में हम पर भी वाजिब होगा। कौलहु, एक दो खवास मिर्ज़ा साहेब ने रूहों के लिखे हैं, मसलन पोशीदा बातों के दरियाफ्त करने की ताकत पैदा कर लेना, जिसका मिर्ज़ा साहेब ख़ुद भी दावा करते हैं और आज तक कोई नहीं दिखलाया। अकूलो, ये बरकात मुकाशफात व मुकालमा व मुखातबा इलाही वग़ैरह खवारिक सिराते मुस्तकीम पर चलने से बेशक खुदाए ताला की तरफ से फरमा बरदार रूहों को असफा और अजला तौर पर अता की जाती हैं, और जो कुछ राकिम रिसाला हाजा पर पेशगोइयाँ मिन जानबिल्ला ज़ाहिर हुई हैं उनमें से करीब 70 पेशगोइयों के गवाह तो खुद आर्य समाज वाले हैं जो आपके भाई बंद कादियान में रहते हैं, बल्कि आप भी तो उन्हीं में दाखिल हैं। दलीप सिंह के इब्तिला का हाल जो आपने पेश अज़ वकू इश्तहार 20 फरवरी 1886 में पढ़ लिया था, और फिर मेरी ज़ुबानी भी एक मजमा आम में जिसमें कई हिंदू साहेब आपके रफ़ीक भी शामिल थे सुन लिया था। ये ताज़ा माजरा उम्मीद नहीं कि इस कदर जल्द तर अरसे में आपको भूल गया हो। अब आप ज़रा बेदार होकर देखें कि ये पेशगोई कैसी हूबहू पूरी हो गई, और दलीप सिंह को कसद सफ़र पंजाब में क्या कुछ गम गुस्सा और तलखी और रंज उठाना पड़ा, और कैसे वो नाकामी से खफीफ करके वापस लुटाया गया। क्या आप हल्फ उठा कर कह सकते हैं कि आपको पेश अज़ वकू दलीप सिंह के इब्तिला की खबर नहीं दी गई? क्या आप कसम खा कर बयान कर सकते हैं कि आपको जलसा आम में ये नहीं बतलाया गया कि वो फ़िकरा इश्तहार 20 फरवरी 1886 जिसमें लिखा है कि एक अमीर नौवारिद पंजाबी उलअसल की नस्बत मुतवाहिश खबरें, इससे मुराद दलीप सिंह है, ऐसा ही ये खबर जा बजा सदहा हिंदुओं और मुसलमानों को जो 500 से किसी कदर ज़्यादा ही होंगे कई शहरों में पेश अज़ वकू बतलाई गई थी, और इश्तहारात 20 फरवरी 1886 भी दूर दूर मुल्कों तक तकसीम किए गए थे। फिर आखिरकार जैसा कि पेश अज़ वकू बयान किया गया और लिखा गया था, वो सब बातें दलीप सिंह की नस्बत पूरी हो गईं, और ये पेशगोई ऐसे वक्त में यानी 20 फरवरी 1886 में लिखी गई और शोहरत दी गई कि जब दलीप सिंह की पंजाब में भी ज़रूर आ जाने की एक धूम मची हुई थी और बाज़ दोस्त और भाई बंद उसकी इसी ख्याली खुशी में पेशवाई के लिए बम्बई तक भी जा पहुँचे थे, तो ये पेशगोई करोड़ हा शख्सों के ख्यालात के मुखालिफ और हालात मौजूदा के बरक्स की गई, और सब ने देख लिया कि कैसी ठीक ठीक ज़हूर में आई। अब फरमाइए आपका ये कहना कि आज तक कोई पेशगोई हमने नहीं देखी झूठ है या नहीं? इसी तरह साहिब अखबार आम लाहौर की खिदमत में भी अर्ज़ किया जाता है कि जो कुछ उन्होंने अपने पर्चा 21 जुलाई 1886 में इस पेशगोई के इनकार में लिखा है उसके पढ़ने से हमें उनके तासुब और नाफहमी पर बहुत ही अफसोस आता है। वो फरमाते हैं कि 20 फरवरी 1886 से बहुत अरसा पहले दलीप सिंह साहिब का अज़्म हिंदुस्तान के ख़ास आम में मशहूर हो चुका था, मगर अफसोस के उन्होंने नहीं समझा कि इस मशहूरी से पेशगोई के मज़मून को क्या ताल्लुक़ है। बल्कि पेशगोई का मज़मून तो सिर्फ इस बात से मखसूस है कि दलीप सिंह साहिब को कसद पंजाब में नाकामी है और उनकी इज़्ज़त या जान या आसाइश पर इस सफ़र में सदमा पहुँचेगा। अब मुनसिफीन ख्याल करें कि अखबार आम लाहौर की ये नुक्ता चीनी पेशगोई पर क्या असर पहुंचा सकती है, और उनका इंसाफ और फहम जो मनसब अखबार नवीसी के लिए एक ज़रूरी शर्त है किस दर्जे का है। अफसोस के बहुत लोग हसद और इनाद के इश्तियाल में पढ़कर हकीकत हाल को नहीं सोचते। जैसा कि इन्हीं पेशगोइयों के मुतालिक एक साहिब पंडित लेखराम ने नाहक अपना अंदरूनी बुखल और नाइंसाफ़ी और हठधर्मी जाहिर करने के लिए जा बजा इश्तहारात छाए किए और इन जानब पर यह इल्ज़ाम रखा कि गोया हमने किसी इश्तहार में यह पेशगोई की थी कि वो लड़का मौसूफ बसिफात जिसका इश्तहार 20 फरवरी 1886 में ज़िक्र है ज़रूर हमले मौजूदा में ही पैदा हो जाएगा, हरगिज़ उससे तखल्लुफ़ नहीं करेगा, वो ज़हूर में नहीं आई। हालांकि ऐसा और इन शरायत से कोई इश्तहार इस तरफ से शाये नहीं हुआ, और अगर है तो क्यों पेश नहीं किया। हकीकत हाल तो ये है कि आँखों की नाबीनाई कुछ ज़रर नहीं कर सकती, बल्कि दिलों की नाबीनाई जो तासुब के बुखारात से पैदा होती है वही ज़रर करती है। ये शख्स जिसका नाम हमने अभी बयान किया है, उसने 40 दिन तक भी हमारी आजमाइश के लिए हमारी सोबत में रहना मंजूर नहीं किया, हालांकि इन पंडित साहिब को तनख्वाह देना भी कबूल किया गया था। इन साहिबों को बजुज दुश्नामदही और बदजुबानी और आलाइश की बातों के जो उनके अंदर भरी हुई हैं और कोई हरफ सलाहियत व माकूलियत याद नहीं। अगर अब भी ये साहिब 40 दिन तक हमारे पास रहना मंजूर करें और हम इल्हामी पेशगोइयों में झूठे निकलें तो जो जलील तर सजा तजवीज़ की जाए उसकी हम लायक हैं, वरना चोटी कटाना और मुसलमान होना उन पर वाजिब होगा। माँ सिवा इसके जो कुछ हमारा दावा पेशगोइयों की नस्बत है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 1-2 पेशगोइयों से इसका सबूत दिया जाता है, बल्कि इस दावे के इस बात के बारे में अनकरीब रिसाला सिराज मुनीर बफजल खुदावंद कदीर छप कर शाये होने वाला है, और वो तमाम रिसाला इल्हामी पेशगोइयों पर मुश्तमिल है। तब सब लोग देख लेंगे कि जो कुछ हमारे मुखालिफीन हमारी नस्बत तरह तरह की राय लगाते हैं उनकी क्या असलियत व हकीकत है। हम इस रिसाले में मिर्ज़ा इमामुद्दीन जो हमारी बिरादरी में से है और दीन इस्लाम से मुर्तद है और अब आर्य समाज में दाखिल हो गया है उसकी नस्बत भी कई पेशगोइयाँ लिखेंगे। हम पर आज भी जो 3 अगस्त 1886 है निजानबिल्ला उसकी नस्बत मालूम हुआ है कि अगर वो तोबा ना करे तो उसकी बेराहियों का वबाल जल तर उसे दरपेश है, और अगर ये मामूली रंजों में से कोई रंज हो तो उसको पेशगोई का मिसदाक मत समझो। लेकिन अगर ऐसा रंज पेश आया जो किसी के ख्याल गुमान में नहीं था तो फिर समझना चाहिए कि ये मिसदाक पेशगोई है। लेकिन अगर वो बाज आने वाला है तो फिर भी अंजाम बखैर होगा या तंबीह के बाद राहत पैदा हो जाएगी। और ये दावा हमारा बिल्कुल सही और नहायत सफाई से साबित है कि सिरात मुस्तकीम पर चलने से तालिब सादिक इल्हाम इलाही पा सकता है, क्योंकि अव्वल तो इस पर तजर्बा ज़ाती शाहिद है। माँ सिवाय इसके हर एक आकिल समझ सकता है कि इस दुनिया में इससे बढ़कर और कोई मारफत इलाही का आला रुतबा नहीं है कि इंसान अपने रब करीम जल्ल शानहू से हम कलाम हो जाए। यही दर्जा है जिससे रूहें तसल्ली पाती हैं और सब शकूक व शुबहात दूर हो जाते हैं, और इसी दर्जा साफिया पर पहुँच कर इंसान इस दकीका मारफत को पा लेता है जिसकी तहसील के लिए वो पैदा किया गया है। और दरअसल निजात की कुंजी और हस्ती माहूम का उकदा कुशा यही दर्जा है जिससे साबित होता है और खुल जाता है कि खालिक हकीकी को अपनी मखलूक ज़ईफ़ से किस कदर कुर्ब वाक़ है। इस दर्जे तक पहुँचने की खबर हमें उसी नूर ने दी है जिसका नाम कुरान है। वो नूर साफ आम तौर पर बशारत देता है कि इल्हाम का चश्मा कभी बंद नहीं हो सकता। जब कोई मशरिक का रहने वाला या मगरिब का बाशिंदा दिली सफाई से खुदाए ताला को ढूंढेगा और उससे पूरी पूरी सुलह कर लेगा और दरमियान के हिजाब उठाएगा तो ज़रूर उसे पाएगा, और जब वाकई और सच्चे और कामिल तौर पर पाएगा तो तो ज़रूर खुदा उससे हम कलाम होगा, मगर वेदों ने इंसान के इस दर्जे तक पहुँचने से इनकार किया है और सिर्फ चार ऋषियों तक जो वेदों के मुसन्निफ़ हैं बकौल आर्य समाज वालों के इस दर्जे को महदूद रखा है। ये वेदों की ऐसी ही गलती है जैसे और बड़ी बड़ी गलतियों से वो पुर है। ये बात जाहिर है कि सब बनी आदम मुत्तहिदुल फितरत हैं और जो बात एक आदमी के लिए मुमकिन है वो सबके लिए मुमकिन है और जो कुर्ब मारफत एक फ़र्द बशर के लिए जायज़ है वो सबके लिए जायज़ है क्योंकि वो सब असल तीनत में एक ही जौहर से हैं। हाँ, कमालात में कमी बेशी है मगर जिनसे कमालात में सिरे से जवाब तो नहीं। और अगर कोई ऐसा शख्स हो कि उसमें तहसील कमालात इंसानी की एक ज़र्रा भी इस्तेदाद ना हो तो वो खुद इंसान ही नहीं हो सकता। गरज थोड़े बहुत का तो इंसानी इस्तेदादों में फ़र्क ज़रूर होता है मगर इंसान होकर यक लख्त फुकदान इस्तेदाद नहीं हो सकता। भला हम पूछते हैं कि हिंदुओं के ईश्वर को वेदों के उतारने से मकसद और इल्लत गाई क्या है? अगर ये मकसद है कि तालोग वेदों को पढ़कर और उनके ठीक ठीक पाबंद होकर अपने कमाल मतलूब तक पहुंच जाएं, तो फिर इस कमाल तक पहुंचने का राह क्यों आप ही बंद करता है? अगर उन ऋषियों का वजूद जिन पर वेद नाजिल हुए थे बतौर नमूना के नहीं था कि तालोग उसी नमूने के मुआफ़िक वेदों पर चलने से अपने वजूदों को बना लें तो ऐसे ऋषियों के भेजने की ज़रूरत ही क्या थी। ये बात ज़ाहिर है कि खुदा ताला की किताबें और खुदा ताला के नबी इसी गरज और मुद्दा से आया करते हैं कि ताबो लोगों की आँखों के सामने नमूने की तरह होकर उनको ये तरगीब व तहरीक दें कि जो शख्स उनके नक्शे कदम पर चले और उनके तरीक में महव हो जाए वो आखिर उन्हीं का रूप हो जाएगा और उन्हीं के रंग में आ जाएगा। लेकिन अगर हिंदुओं के परमेश्वर ने ऐसा इरादा ही नहीं किया कि उन चार ऋषियों के रंग से जो नमूने के तौर पर भेजे गए थे कोई तालिब हक रंगीन हो जाए, तो फिर ये काम उनके परमेश्वर का सरासर बेहुदा और फजूल होगा। इस जगह इस सवाल के करने की कुछ ज़रूरत नहीं कि अगर हिंदुओं के परमेश्वर ने वेदों को तकमील नफूस नाकसा के लिए भेजा था तो वेदों ने नाजिल होकर किस कदर खलकत को कमाल के दर्जे तक पहुँचाया है, क्योंकि इस बारे में हिंदू लोग आप ही कायल हैं कि किसी शख्स को वेदों ने मर्तबा कमाल तक नहीं पहुंचाया। जाहिर है कि कैफियत व हकीकत कमाल की हिंदुओं के परमेश्वर के नज़दीक भी वही है जिसका नमूना उसने वेदों के ऋषियों में कायम किया था, और वो यही है कि बज़ोम आर्या लोगों के उन ऋषियों को इल्हाम इलाही से सरफराज फरमाया गया। अब जबकि कमाल मारफत की हकीकत ये ठहरी और दूसरी तरफ उनके परमेश्वर ने यह भी साफ साफ सुना दिया कि कोई शख्स अबदुल्लाबाद तक वजूज चार ऋषियों के इल्हाम नहीं पा सकता, तो ये अजीब और बाशाना कार्रवाई है। भला अगर कोई इन चार ऋषियों की पैरवी से उनका रंगो बूए हासिल नहीं कर सकता तो फिर एक अक्लमंद वेदों के मानने और उन पर अमल करने में क्यों नाहक की टकरे मारे? ये किस किस्म की रिंदाना हरकत है जो हिंदुओं के परमेश्वर से जहूर में आई कि अव्वल चार ऋषियों को नमूने के तौर पर भेजा तालोग उस नमूने के मुआफिक चलकर उन ऋषियों के हम रंग हो जाएं और वही नेमत हासिल कर लें जो उनको दी गई थी, और फिर दूसरी तरफ ये भी सुना दिया कि ये बात हरगिज़ मुमकिन ही नहीं कि कोई शख्स उन ऋषियों के रंग में आकर इल्हाम पाने का लायक ठहर जाए। नाज़रीन समझ सकते हैं कि अगर वेद कमाल मतलूब तक किसी को नहीं पहुंचा सकते तो फिर उनका भेजा जाना बिल्कुल अबस और बेहुदा हुआ, और बजूज इस बद असर के कि करोड़ों आदमियों को उनकी पुरशिर्क तालीम ने मुशरिक बना दिया, और कौन सा नेक समरा है जो उनके आने से मुतरतब हुआ। और वो चार आदमी जिन पर आर्यों के ख्याल में वेद नाजिल हुए वो भी दर हकीकत वेदों के ममनून एहसान नहीं हो सकते, बल्कि वह बकौल आर्या लोगों के किसी पहले जन्म के आमाल के बायस इल्हाम पाने के लायक ठहर गए थे।